नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ाई। तटरक्षक बल ने अरब सागर के भारतीय जल क्षेत्र में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। भारतीय दूतावास ने इसराइल की गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में डकवर्थ लुइस नियम के अंतर्गत अमेरिका को 6 विकेट से हराया। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के लिन चुनयी से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव भी साझा करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इस अवधि के दौरान भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है, जिसमें देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत 2030 तक $7.3 trillion की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है वे न केवल आर्थिक वृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, बल्कि भारत के भविष्य तैयार नवाचार आधारित आर्थिक मॉडल के स्थायी प्रतीक भी होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के कामाख्या को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेलगाड़ियों से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यात्रियों का आवागमन संपर्क बेहतर होगा। प्रधानमंत्री रविवार को हावड़ा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, सियालदह और वाराणसी के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा संत रागाछी और ताम्बरम के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत की विद्युत स्थापन उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 249 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 510 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो दोगुने से भी ज्यादा है। कल नई दिल्ली में भारत विद्युत सम्मेलन 2026 के पूर्वालोकन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विद्युत आधिक्य के नए युग में पहुंच गया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ऊर्जा की दिशा में न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि क्रांतिकारी परिवर्तन भी कर रहा है। आज भारत का पावर सेक्टर एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा चरण जिसकी पहचान रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी से होती है।
निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है।
अब लोग 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों CEO के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। निर्वाचन आयोग ने CEO को दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि में विस्तार के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। हाल ही में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी IPAC के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी की कार्रवाई के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को जेईई 2026 मेंस के लिए पहली पाली की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापित तिथियों में से कोई अन्य तिथि आवंटित की जाएगी। परीक्षा की तिथि में बदलाव सरस्वती पूजा समारोह के मद्देनजर किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के जालंधर में डॉक्टर बीआर आम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति संस्थान के परिसर में एक विशाल और ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज सहित साइबर सुरक्षा तथा 5G तकनीक से सुसज्जित उत्कृष्टता केन्द्रों का भी उद्घाटन करेंगे। बृहन्मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए कल हुए मतदान की गणना आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं। कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के वासेरा पार्क में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। पतंग महोत्सव में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। तटरक्षक बल ने अरब सागर में भारतीय समुद्री सीमा में पाकिस्तानी नौका अल मदीना को पकड़ा है। मछली पकड़ने वाली इस नाव में चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। पाकिस्तान की नाव ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तटरक्षक बल ने नाव को रोका और उसकी तलाशी ली। इसके बाद नाव को पोरबंदर बंदरगाह ले जाया गया। इसराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
भारतीय दूतावास ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबरों +972547520711 और +972543278392 पर संपर्क कर सकते हैं या conswan.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत की बढ़ती चिंताओं के बीच कल रात न्यूयॉर्क में एक आपातकालीन बैठक की। अमेरिका ने यह बैठक संकट से निपटने के लिए बुलाई थी। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव मार्था पोबी ने ईरान में राष्ट्रव्यापी अशांति और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर सुरक्षा परिषद को यह जानकारी दी। इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हत्याएं जारी रहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक प्रेस वार्ता में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी शासन को ये संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक रिपोर्ट।
IMF ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से अधिक मजबूत रही। संवाददाताओं से बातचीत में IMF के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत का विकास दर मजबूत बना हुआ है और इसका मुख्य कारण घरेलू खपत में बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए IMF ने भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया था। संशोधित अनुमान अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वहीं IMF श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 22 से 28 जनवरी के बीच श्रीलंका में एक सर्वेक्षण दल भेजेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है और ठंड को देखते हुए राज्य के कई जिलों में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे।
कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है। घने कोहरे ने रेल और सड़क यातायात को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, खासतौर पर राज्य के पश्चिमी और तराई इलाकों में। लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। बदायूं, बिजनौर, बरेली, संभल, अमरोहा, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। यहाँ स्कूल सीधे सोमवार को खुलेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अब खेल जगत की तमाम हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
जी फरहत, खेलों की दुनिया में शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने अमेरिका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 6 विकेट से हरा दिया। कल जिम्बाब्वे में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका की टीम 35 ओवर 2 गेंद में मात्र 107 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद बारिश के कारण मैच 37 ओवर का कर दिया गया। 96 रन का संशोधित लक्ष्य भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। भारत के हेनिल पटेल को 5 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप ए के अगले मुकाबले में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और फरहत, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चू यी से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराया। और फरहत, अब रुक करते हैं फुटबॉल के मैदान का। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स टीम के 26 सदस्यों का एक दल तुर्की में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए कल रवाना हुआ। रवानगी से पहले भारतीय टीम ने 12 से 14 जनवरी तक हरियाणा के गुरुग्राम में 3 दिन तक अभ्यास किया। भारतीय टीम तुर्की के मनवागत शहर में 3 यूरोपीय क्लबों के साथ खेलेगी। विंगर सौम्या गुगुलथ और मिडफील्डर कार्तिका अंगामुथु चोटिल होने के कारण टीम में शामिल नहीं है। जी फरहत, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही।
धन्यवाद मुकेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
धन्यवाद फरहत। पश्चिम बंगाल में आईपैक छापेमारी से जुड़ी खबर सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, आईपैक केस में ईडी अफसरों पर एफआईआर की कार्रवाई रोकी, मामला गंभीर, जांच जरूरी। फाइल ले जाने पर ममता से मांगा जवाब, जनसत्ता के शब्द हैं। जांच में बाधा संबंधी ईडी का आरोप गंभीर, इस मामले की समीक्षा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्देश जारी किए, किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा से नहीं रोक सकते, 4 महीने में भरे सभी खाली पद, अमर उजाला की खबर है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी होगी, इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, ट्रंप ने सुर बदले, ईरान में युवाओं की आस टूट रही, 19 दिन उबाल के बाद अब सन्नाटा। देशबंधु ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए अभ्यास करते भारतीय सेना जवानों की तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें कई जवान तिरंगे के साथ बाइक पर बैलेंस बनाते नजर आ रहे हैं। इमोजी के जरिए मरीज का तनाव घटा रहे डॉक्टर, मिशनगंज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया अहम विश्लेषण, हिंदुस्तान की खबर है।
धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ाई। तटरक्षक बल ने अरब सागर के भारतीय जल क्षेत्र में चालक दल के 9 सदस्यों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा। भारतीय दूतावास ने इसराइल की गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। भारत ने 19 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका को 6 विकेट से हराया और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना लिन चून यी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।